गोपियां और श्री राधा मोती सिल्क में भी आरंभ में इन श्रृंगार लीलाओं का उतना प्राधान्य नहीं दिखता। कहा जाता है कि सन ईस्वी की दूसरी शताब्दी के पहले ही कोई भी मोती या उत्कीर्ण भित्ति चित्र श्री कृष्ण से संबद्ध नहीं मिला है। राय बहादुर श्री दयाराम साहानी ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे की 1925 से 1926 की रिपोर्ट में बताया है कि मथुरा में श्री कृष्ण के जन्म का उत्कीर्ण चित्र प्राप्त हुआ है जो संपूर्ण नहीं है। चौथी शताब्दी से श्री कृष्ण लीला की प्रमुख कथाएं बहुत अधिक लोकप्रिय हो गई थी, ऐसा जान पड़ता है। मंदसौर मंदिर के टूटे हुए दो द्वार स्तंभ प्राप्त हुए हैं, जिनमें गोवर्धन धारण, नवनीत, चौर्य, शकट भंग, धेनुकवद और कालीय दमन की लीलाएं उत्कीर्ण हैं। विद्वानों का मत है कि इसका निर्माण काल सन ईस्वी की चौथी या पांचवी शताब्दी होगा। संभवतः चौथी शताब्दी की एक और गोवर्धनधारी मूर्ति मथुरा में प्राप्त हुई है। महाबलीपुरम में भी गोवर्धनधारी की उत्कीर्ण मूर्ति मिली है। ऐसा जान पड़ता है कि गोवर्धनधारी श्री कृष्ण चरित की सर्वप्रिय लीला उन दिनों रही होगी। सातवीं शताब्दी की बादामी की गुफाओं और भीति मात्र पर उत्कीर्ण श्री कृष्ण लीलाओं का स्थान भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बंगाल के पहाड़पुर की खुदाई में सबसे पुरानी ऐसी मूर्ति मिली है जिसमें कृष्ण एक गोपी के साथ है। डॉक्टर सुनीति कुमार चाटुरिया ने समझाया है कि यह मूर्ति राधा की हो सकती है, पर प्रेम विलास और भक्ति रत्नाकर में लिखा है कि नित्यानंद प्रभु की छोटी पत्नी जाह्नवी देवी जब वृंदावन गई तो उन्हें यह देखकर बहुत दुख हुआ कि श्री कृष्ण के साथ राधा की मूर्ति की कहीं पूजा नहीं होती, और घर लौटकर उन्होंने नयन भास्कर नामक कलाकार से राधा की मूर्तियां बनवाई और उन्हें वृंदावन भिजवाया। जीव गोस्वामी की आज्ञा से ये मूर्तियां श्री कृष्ण के पार्श्व में रखी गईं और तब से श्री कृष्ण के साथ राधिका की भी पूजा होती है। तब से बंगाल में पुरानी विष्णु मूर्तियों और बालक कृष्ण की मूर्तियों को छोड़कर अकेली कृष्ण मूर्ति की पूजा नहीं होती। इस प्रकार शिल्प और साहित्य दोनों की गवाही से यह पता चलता है कि आरंभ में श्री कृष्ण की वीर चर्चा ही प्रधान थी। कंसवध और गोवर्धन धारण इन दिनों काव्य, नाटक और शिल्प के प्रधान प्रतिपाद्य थे। पुराणों में गोपियों के प्रेम की चर्चा आती है, पर वह उत्तरोत्तर बढ़ते हुए रूप में दिखती है। विष्णु पुराण में गोपियों के प्रेम की चर्चा है, पर भागवत पुराण में बहुत विस्तृत रूप में है। रास पंचाध्यायी को भागवत का सार कहा जाता है। इस पुराण में राधा का नाम नहीं आता। गाथा सप्तसती में, पंचतंत्र में और ध्वन्यालोक में राधा का नाम आया है, पर कृष्ण के सर्वाधिक प्रिय गोपी के रूप में उनका नाम भागवतोत्तर साहित्य में अधिक है। भागवत में अन्य लीलाओं का भी कम दस्तार नहीं है। पूर्ववर्ती पुराणों से भी कुछ अधिक महिमा स्थापक कथाएं इसमें पाई जाती हैं, पर गोपी प्रेम इस पुराण में बहुत ही उदात्त रूप में चित्रित है। राधा का नाम तो नहीं है, पर एक गोपी की चर्चा उस पुराण में ऐसी है जिसके अनुसार किसी विशिष्ट गोपी के प्रति भगवान का अधिक अनुराग व्यक्त हुआ था। गीत गोविंद में राधा प्रमुख गोपी है, और उससे पता चलता है कि इस रास में जिस गोपी के प्रति भगवान ने अधिक अनुराग दिखाया था वह राधा ही थी। राधा माधाय हृदय त्याज ब्रज सुंदरी। राधा को हृदय में धारण करके भगवान ने अन्य ब्रज सुंदरियों को छोड़ दिया था। अवश्य ही गीत गोविंद का रास वसंत रास है। विद्यापति ने भी ऐसे रास का वर्णन किया है, किंतु भागवत का रास शरद रास है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में राधा प्रमुख गोपी है। योगेश चंद्र राय का अनुमान है कि ब्रह्म वैवर्त पुराण 16वीं शताब्दी से पश्चिमी बंगाल की में कहीं लिखा गया था और उसके लेखक को गीत गोविंद से परिचय था। जो हो, श्री कृष्ण चंद्र और गोपियों के प्रेम की प्रधानता भागवत ने स्थापित कर दी थी। कितने ऊंचे स्तर पर भागवत ने प्रेमाधार को रखा है, इसका पता उद्धव के उस कथन से लग जाता है जिसमें उन्होंने वनवासिनी और अशिक्षिता ब्रजबालाओं के अनन्य प्रेम को देखकर कहा था, अहो यदि मैं भी वृंदावन में गोपियों के चरण रज की सेवन करने वाली लता औषधि और झाड़ियों में से कुछ हो जाऊं तो भी धन्य हो जाऊं। धन्य है ये गोपियां जिन्होंने अपने स्वजनों को और आर्य धर्म को भी त्याग कर श्रुतियों द्वारा अनुसंधेय भगवत प्राप्ति के मार्ग का अनुसरण किया है। आशा बहु चरण रेणु जुसाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्म लता औषधि नाम या तुस्त्यजम स्वगत मार्य पथ ही हेत्वा भेजुर मुकुंद पदवे श्रुति भीरवे मृण्याम। वायु पुराण में यह बताया अवश्य है कि ब्रज में श्री कृष्ण का पालन हुआ था, पर कथा को विस्तार नहीं दिया गया। अग्नि पुराण से भी अनुमान किया जाता है कि गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अनुराग प्रकट किया था, पर कथा को विस्तार देने में और गोपी प्रेम लीला को इतना उदात्त रूप देने में भागवत पुराण अद्वितीय है। पद्म पुराण से वृंदावन की नित्य लीला की चर्चा है, राधा का नाम आता है, पर यह पुराण बहुत पुराना नहीं कहा जा सकता। जिस अंश में राधा कृष्ण के नित्य विहार की चर्चा है वह तो निसंदेह परवर्ती है। भागवत में कुछ गोपालों के नाम जैसे श्रीदामा, सुदामा, भद्रसेन, अंशु, अर्जुन, विशाल, तेजस्वी, ब्राह्मण आदि तो आए हैं, पर पद्म पुराण में गोप गोपियों के नाम की जो सूची है वह विस्तीर्ण है। ब्रह्म वैवर्त में यह सूची और बढ़ गई है। इन नामों का प्रचार बंगाल में अधिक है। प्रोफेसर सुकुमार सेन ने अपनी पुस्तक ब्रज बुली लिटरेचर में इसकी विस्तृत चर्चा की। इस अंश के लिखने में उस पुस्तक से बहुत सहायता ली गई है। उत्तर भारत में राधिका के अतिरिक्त ललिता, विशाखा और चंद्रवली का नाम मिल जाता है, पर गौड़ीय वैष्णवों में अनेक गोपियों और गोपों के नाम का उल्लेख है। इससे इतना तो स्पष्ट है कि पद्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण दोनों का ही मूल रचना स्थान बंगाल है। बंगाली वैष्णव आचार्यों ने बड़े विस्तार पूर्वक इन गोपियों के नाम, रूप, स्वभाव, वस्त्र आदि का वर्णन किया है। इन भक्त आचार्यों ने चंद्रावती को राधिका की प्रतिद्वंदिनी के रूप में चित्रित किया है। इस प्रतिद्वंदिता का आभास पद्म पुराण में भी मिल जाता है, परंतु आगे चलकर बंगाल के वैष्णवों ने इस प्रतिद्वंदिता को जितना विस्तार दिया है उतना उत्तर भारत के वैष्णवों ने नहीं दिया। मध्यकाल में दान लीला, नाग लीला, विसाती लीला, दधि मेचन की लीला आदि का बहुत अधिक महत्व रहा है। बंगाल में नौका लीला ने भी प्रमुख स्थान अधिकार किया है, जो उचित ही है। रूप स्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में स्पष्ट किया है कि वे जिन गोपियों का नाम बता रहे हैं उनमें कुछ बंगाल में लोक प्रचलित हैं,